Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
मुख्य समाचारों में रूस द्वारा एक महत्वपूर्ण परमाणु संधि दस्तावेज को अवरुद्ध करने में ऑस्ट्रेलिया निराश। दो अमरीकी युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट के बीच से गुजरते हुए और भारत में आज नोएडा में होगा सुपरटेक ट्विन टावर्स का ध्वस्तीकरण कार्य। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने परमाणु संधि की समीक्षा पर प्रगति को अवरुद्ध करने वाले रूस के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। परमाणु हथियार समझौते की समीक्षा के अप्रसार के अंतिम मसौदे से सहमत होने से इनकार करने के फेडरेशन के फैसले के बाद विदेश मंत्री पेनी वोंग ने रूस को जानबूझकर प्रगति में बाधा डालने के रूप में बताया है। विदेश मंत्री का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण की तत्कालिकता के बावजूद सम्मेलन के आम सहमति के परिणाम तक नहीं पहुंचने से ऑस्ट्रेलियन सरकार बहुत ही निराश है। रूस के इनकार को रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन में घुसपैठ के तुरंत बाद यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर रूस के सैन्य अधिकरण की आलोचना के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अब इसने परमाणु आपदा की आशंका को बढ़ा दिया है। विक्टोरिया में आगामी 26 नवंबर के राज्य चुनाव के लिए स्वास्थ्य का मुद्दा तेजी से एक प्रमुख केंद्रीय बिंदु बनता जा रहा है। विक्टोरियन सरकार ने आज घोषणा की कि वो अगले दो वर्षों के लिए हजारों छात्र के लिए नर्सों और दाइयों यानी मिडवाइफ्स की शिक्षा को रेखांकित करेगी। मेलबर्न और क्षेत्रीय विक्टोरिया में अस्पतालों के निर्माण और उन्नयन के लिए गठबंधन ने पहले ही सरकार की नियोजित उपनगरीय रेल लूप परियोजना को स्थगित करने का वचन दिया है ताकि उस धन को प्रयोग किया जा सके। लेबर की ओर से आज की घोषणा में 5 साल के कार्यक्रम पर $270 मिलियन खर्च किए जाएंगे, जिसमें सभी घरेलू छात्रों को उनके 3 साल के स्नातक अध्ययन के लिए $9,000 देने और शेष $7,500 उन छात्रों को भुगतान किया जाएगा यदि वे 2 साल के लिए विक्टोरियन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मेरी एन थॉमस का कहना है कि उनका ध्यान कार्यबल की आपूर्ति पर है।
Our government knows that you can build all the hospitals you like, but if you have not trained and supported the workforce, they will be nothing but an empty shell.
न्यू साउथ वेल्स सरकार ने आज सिडनी में पुनर्निर्मित एलियंस स्टेडियम की आधिकारिक उद्घाटन पर इसकी अंतिम लागत का बचाव किया है। प्रीमियर डोमिनिक पेरेटे का कहना है कि अंतिम $828 मिलियन मूल्य हमेशा से ही अनुमानों में था और पत्रकारों को बताया कि राज्य के निवासियों की समृद्धि और आनंद के लिए यह निवेश महत्वपूर्ण था। उनका कहना है कि इस सप्ताह के जॉब शिखर सम्मेलन में कार्यबल की कमी और उत्पादकता पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी ताकि चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि और भी परियोजनाएं चल रही हैं।
New South Wales has the most skin in the game because there is no place in this country or around the world that is building as much as New South Wales is. So when you look at cost escalation, when you talk at labour shortages, these are challenges that affect New South Wales more than anyone else.
संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 नौसेना युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जल के माध्यम से नौकायन यानी सेल कर रहे हैं। इस तरह का पहला ऑपरेशन अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की द्वीप यात्रा पर चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद हुआ। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि क्रूजर चांसलरविल और एंटी एटम एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, जिसके बारे में समझा जाता है कि ये अभी भी चल रहा है। अमरीकी युद्धपोत अतीत में भी नियमित रूप से इस स्ट्रेट के माध्यम से जाते रहे हैं और इस पर बीजिंग का गुस्सा भी रहा है। ताइपे में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार पर आपत्तियों के साथ चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ प्रभावित सिंध प्रांत में प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई है। जून के मध्य से लेकर अब तक पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में भारी मानसूनी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग घायल हो गए और विस्थापित हो गए। अंगराज खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विस्थापित हुए हैं।
The flood water entered into my area. I came here to save myself and my cattle. Some of my children are at home. They're on a rooftop, so I will evacuate them after fixing these tents.
इस संकट ने सरकार को आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ से निपटने के लिए पाकिस्तान में यूएन सहायता एजेंसियों और उनके सहयोगियों के लिए $3 मिलियन आवंटित किए हैं। और भारत में उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए आज स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे ध्वस्तीकरण का कार्य होगा। 40 मंजिला इमारत को ढहाने के लिए विस्फोटकों और संबंधित व्यवस्थाओं का कल शनिवार को अंतिम निरीक्षण किया गया। ट्विन टावर्स को गिराने के कार्य में लगे अधिकारियों ने कहा है कि 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक टावर्स में लगाए गए हैं और ध्वस्तीकरण के बाद सफाई कर्मियों के अलावा मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर भी साइट पर लगाए जाएंगे। नोएडा बेस्ट कंपनी ने 2000 के दशक के मध्य में एमरल्ड कोर्ट नाम परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 14 मंजिला टावर होने चाहिए थे, लेकिन कंपनी ने प्लान में बदलाव किया। 2012 तक परिसर में 14 की जगह 15 इमारतें बनाई गईं, जो 9 की जगह 11 मंजिला थीं। साथ ही इस योजना के अलावा जहां ग्रीन एरिया बनाने का वादा था, वहां एक और योजना शुरू हो गई, जिसमें 40 मंजिला 2 और इमारतें बनाने की बात रही। इस पर कंपनी और स्थानीय लोगों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और मांग की गई कि इन दोनों इमारतों को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि इन्हें अवैध रूप से बनाया जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में इस तथ्य का हवाला देते हुए नोएडा ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया कि टावरों का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। वैसे शीर्ष अदालत में इस मामले से संबंधित कई बार सुनवाई हुई, लेकिन फैसला वही रहा और आज इन दोनों इमारतों को गिराया जा रहा है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमरीका के लगभग 69 सेंट और भारत के 55.16 रूपये के बराबर है। खेल समाचारों में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को एक पारी और 85 रन से जीत मिली और इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपनी गेंदबाजी से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज, यानी वो फास्ट बॉलर बन गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ग्लेन मैकग्रा के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। मैकग्रा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 949 विकेट लिए थे, वहीं अब एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 951 विकेट हासिल कर लिए हैं। वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के पूरी तरह से अगर आंकड़े को देखा जाए तो श्रीलंका के मुरलीधरन के नाम सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कुल 1347 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर शेन वॉन 1001 विकेट और तीसरे नंबर पर 956 विकेट्स के साथ भारत के कुंबले का नाम है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी सोमवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें और हवाएं चलेंगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में देर तक बौछारों की बात है, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री। कैनबरा में बौछारों में तेजी आएगी, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.